ये हफ्तावार बाइबल का दरसीवाज प्लेनफील्ड क्रिश्चियन साइंस चर्च इंडिपेंडेंट की जानिब से है, जो न्यू जर्सी अमरीका में वाकया है। मजीद मालूमात के लिए आप हमारी वेबसाइट मुलाहिजा करें www.plainfieldcs.com। ये सबक 1 दिसंबर 2024 बरोज इतवार हफ्ता के अख्ताम पर आपके मतलब की गर्ज से तैयार किया गया है। मजमून: कदीम और जदीद जादूगरी, उर्फियत, तनवीम और इल्मे नौमियात से इनकार। सुनहरी मतन: लुका। तू खुदावंद अपने खुदा को सजदा कर और सिर्फ उसी की इबादत कर। जवाबी मतालिया: मलाकी, जबूर। क्योंकि मैं खुदावंद ला तब्दील हूँ, इसीलिए ए बनी याकूब तुम निस्त नहीं हुए। तुम अपने बाप दादा के अयाम से मेरे आयन से मुनहरफ रहे और उनको नहीं माना। तुम मेरी तरफ रजू हो तो मैं तुम्हारी तरफ रजू होऊंगा, रबुल अफवाज फरमाता है। ऐ मेरी जान, खुदावंद को मुबारक कह और जो कुछ मुझ में है उसके कदूस नाम को मुबारक कहे। ऐ मेरी जान, खुदावंद को मुबारक कह और उसकी किसी नेमत को फरामोश ना कर। वो तेरी सारी बदकारी बख्शता है, वो तुझे तमाम बीमारियों से शिफा देता है। वो तेरी जान हलाकत से बचाता है, वो तेरे सर पर शफ़क़त और रहमत का ताज रखता है। दरसीवाज बाइबल में से तवारीख। आसा की सल्तनत के 36वें बरस इसराइल का बादशाह बाशा यहूदा पर चढ़ आया और रामा को तामीर किया, ताकि यहूदा के बादशाह आसा के यहाँ किसी को आने जाने ना दे। तब आसा बादशाह ने सारे यहूदा को साथ लिया और वो रामा के पत्थरों और लकड़ियों को जिनसे बादशाह तामीर कर रहा था उठा ले गए, और उसने उनसे जब्बा और मिसफाक को तामीर किया। उस वक्त हनानी गैबिन यहूदा के बादशाह आसा के पास आकर कहने लगा, चूंकि तूने आराम के बादशाह पर भरोसा किया और खुदावंद अपने खुदा पर भरोसा ना रखा, इसी सबब से आराम के बादशाह का लश्कर तेरे हाथ से बच निकला। क्या कोशी और लोबी अंबवाई कसीर ना थे, जिनके साथ गाड़ियां और सवार बड़ी कसरत से थे? तो भी चूंकि तूने खुदावंद पर भरोसा रखा, उसने उनको तेरे हाथ में कर दिया। क्योंकि खुदावंद की आंखें सारी ज़मीन पर फिरती हैं, ताकि वो उनकी अमदाद में जिनका दिल उसकी तरफ कामिल है अपने तई कवि दिखाए। इस बात में तूने बेवकूफ़ी की, क्योंकि अब से तेरे लिए जंग ही जंग है। तब आसा ने उस गैबीन से खफा होकर उसे कैद खाना में डाल दिया, क्योंकि वो उस कलाम के सबब से नहायत गज़बनाक हुआ और आसा ने उस वक्त लोगों में से बाज़ औरों पर भी जुल्म किया। और देखो, आसा के काम शुरू से आखिर तक यहूदा और इसराइल के बादशाहों की किताब में कलम बंद हैं। और आसा की सल्तनत के 39वें बरस उसके पाँव में एक रोग लगा और वो रोग बहुत बढ़ गया, तो भी वो अपनी बीमारी में खुदावंद का तालिब नहीं बल्कि तबीबों का खां हुआ। और आसा अपने बाप दादा के साथ सो गया। उसने अपनी सल्तनत के 41वें बरस में वफात पाई। इस्तस्ना: जब तू इस मुल्क में जो खुदावंद तेरा खुदा तुझको देता है पहुंच जाए, तो वहां की कौमों की तरह मकरू काम करने ना सीखना। तुझ में हरगिज कोई ऐसा ना हो जो अपने बेटे या बेटी को आग में चलवाए, या फालगीर या शगुन निकालने वाला, या अफसूनगर या जादूगर, या मंत्री या जन्नात का आशना, या रमाल या साहिर हो, क्योंकि वो सब जो ऐसे काम करते हैं खुदावंद के नज़दीक मकरूह हैं, और इन्हीं मकरूहात के सबब से खुदावंद तेरा खुदा उनको तेरे सामने से निकालने पर है। तू खुदावंद अपने खुदा के हजूर कामिल रहना, क्योंकि वो कौमें जिनका तू वारिस होगा शगुन निकालने वालों और फालगिरों की सुनती हैं, पर तुझको खुदावंद तेरे खुदा ने ऐसा करने ना दिया। खुदावंद तेरा खुदा तेरे लिए तेरे ही दरमियान से, यानी तेरे ही भाइयों में से मेरी मानद एक नबी बरपा करेगा, तुम उसकी सुनना। लूका। फिर यसु रूह की कुव्वत से भरा हुआ गलील से लौटा और सारे गिर्दोनुआ में उसकी शोहरत फैल गई। फिर वो गलील के शहर कुफरनहूम को गया और सब्बत के दिन उन्हें तालीम दे रहा था, और लोग उसकी तालीम से हैरान थे क्योंकि उसका कलाम इख्तियार के साथ था। और इबादत खाना में एक आदमी था जिसमें नापाक देव की रूह थी। वो बड़ी आवाज़ से चिल्ला उठा कि ऐ यसु नासरी, हमें तुझसे क्या काम? क्या तू हमें हलाक करने आया है? मैं तुझे जानता हूँ कि तू कौन है, खुदा का कदूस है। यसु ने उसे झिड़क कर कहा, चुप रह और उसमें से निकल जा। इस पर बदरू उसे बीच में पटक कर बगैर जरर पहुँचाए उसमें से निकल गई। और सब हैरान होकर आपस में कहने लगे, ये कैसा कलाम है? क्योंकि वो इख्तियार और कुदरत से नापाक रूहों को हुक्म देता है और वो निकल जाती हैं। फिर वो इबादत खाना से उठकर शमौन के घर में दाखिल हुआ और शमौन की सास को बड़ी तप चढ़ी हुई थी, और उन्होंने उसके लिए उससे अर्ज की। वो खड़ा होकर उसकी तरफ झुका और तप को झिड़का तो वो उतर गई, और वो उसी दम उठकर उनकी खिदमत करने लगी। गलतियों। मगर मैं ये कहता हूँ कि अगर रूह के मुआफिक चलो तो जिस्म की ख्वाहिश को हरगिज़ पूरा ना करोगे, क्योंकि जिस्म रूह के ख़िलाफ़ ख्वाहिश करता है और रूह जिस्म के ख़िलाफ़, और ये एक दूसरे के मुखालिफ हैं, ताकि जो तुम चाहते हो वो ना करो। और अगर तुम रूह की हिदायत से चलते हो तो शरीयत के मातहत नहीं रहे। अब जिस्म के काम तो ज़ाहिर हैं, यानी हरामकारी, नापाकी, शहवत परस्ती, बुत परस्ती, जादूगरी, अदावतें, झगड़ा, हसद, गुस्सा, तफरक़े, जुदाइयाँ, बिद्दतें, बुग़्ज़, नशाबाजी, नाच रंग और इनकी मानद। इनकी बाबत तुम्हें पहले से कह देता हूँ, जैसा कि पेशतर जता चुका हूँ, कि ऐसे काम करने वाले खुदा की बादशाही के वारिस ना होंगे। मगर रूह का फल मोहब्बत, खुशी, इत्मीनान, तहम्मुल, मेहरबानी, नेकी, ईमानदारी, हिल्म, परहेजगारी है। ऐसे कामों की कोई शरीयत मुखालिफ नहीं। और जो मसीह यसू के हैं, उन्होंने जिस्म को उसकी रगबतों और ख्वाहिशों समेत सलीब पर खींच दिया है। अगर हम रूह के सबब से ज़िंदा हैं तो रूह के मुआफिक चलना भी चाहिए। ज़बूर। ऐ कौमों, सब खुदावंद की हमद करो। ऐ उम्मतों, सब उसकी सितायश करो, क्योंकि हम पर उसकी बड़ी शफ़क़त है और खुदावंद की सच्चाई अबदी है। खुदावंद की हमद करो। अब मैं मेरी बेकर रेडी की तहरीर करदा क्रिश्चियन साइंस की दरसी किताब साइंस और सेहत आयात की कुंजी के साथ में से ली गई तहरीरें पढ़ूंगा। साइंस और सेहत। चूंकि खुदा ही सब कुछ है तो उसके अदम एहतमाल की कोई गुंजाइश ही नहीं। खुदा रूह ने सब कुछ तन्हा ही खल्क किया और उसे अच्छा कहा, इसलिए बदी अच्छाई की मुखालफ होते हुए गैर हकीकी है और खुदा की तख्लीक करदा नहीं हो सकती। बदी और बीमारी को उनकी इस्लाहात में ही अयां करें और उनकी मजम्मत करें। किसी गुनाहगार को इस बात की यकीन दहानी करवाते हुए उसकी इस्लाह नहीं हो सकती कि वो इसलिए गुनाहगार नहीं है क्योंकि गुनाह है ही नहीं। गुनाह को कमज़ोर करने के लिए आपको इसे खोजना होगा, इसे बेनकाब करना होगा, फरेब नजरी को उजागर करना होगा, और यूं गुनाह पर फतेहमंद हों और इसे गैर हकीकी साबित करें। महज ये कहने से कि बीमारी है नहीं, बीमारी से शिफा नहीं मिलती, बल्कि ये जानने से मिलती है कि बीमारी नहीं है। साइंस अक़ल से ताल्लुक़ रखती है, ना कि मादे से। ये तयशुदा असूल पर बुनियाद रखती है, ना कि झूठे एहसासात के फ़ैसलों पर। रियाजी में दो रकम की जमा हमेशा एक ही नतीजा लाती है, लिहाजा इसमें मंतक है। अगर कयास मंतकी की अकबरी और असगरी तजवीज़ात दोनों दुरुस्त हैं तो मुनासब तौर पर हल किए जाने पर जवाब गलत नहीं हो सकता। इसी तरह क्रिश्चियन साइंस में कोई मुखालफत नहीं, ना कोई तजादात हैं, क्योंकि इसकी मंतक इस कदर हम आहंग है जैसे कयास मंतकी ठीक ठीक हल किया गया हो या रियाजी में ठीक हिसाब किया गया हो। सच्चाई हमेशा हक गो है और ये बुनियाद में या नतीजे में किसी गलती को बर्दाश्त नहीं करती। अगर आप रूहानी हकीकत को जानना चाहते हैं तो आप मादी अफसाने को उलट कर इसे दरियाफ्त कर सकते हैं, खा आप अफसाने के हामी हों या मुखालिफ, खा वो आपके तसव्वुरात से हम आहंग हों या उनके बिल्कुल उलट हों। वहदुल वजूदियत की तारीफ मादे की जहानत पर ईमान के तौर पर की जा सकती है, यानी एक ऐसा अकीदा जिसे साइंस जेर करती है। उन अयाम में ऐसी बड़ी मुसीबत होगी कि दुनिया के शुरू से ना अब तक कभी हुई ना होगी, और ज़मीन चला उठेगी कि क्या तू हक इसलिए यहाँ आया है कि वक्त से पहले हमें अजाब में डाले। हैवानी मकनातीसियत, तनवीम, रूहानियात, वजदान, मादा परस्ती, वहदुल वजूदियत और बेदीनी हकीकी हस्ती के मद्दे मुकाबले हैं और इसके इजहार के लिए मोहलक हैं, और इसी तरह के कुछ और निज़ाम भी। हमें दवा साजी को तर्क करके इल्मे मौजूदात यानी हकीकी हस्ती की साइंस पर तवज्जो देनी चाहिए। हमें चीज़ों के महज बैरूनी फहम को कबूल करने की बजाय हकीकत पसंदी की गहराई को देखना चाहिए। क्या हम अनानास के दरख्त से आड़ू हासिल कर सकते हैं या हस्ती की हमाहंगी से मुखालफत सीख सकते हैं? ताहम इसके साथ साथ काफ़ी हद तक कुछ मोतदल किस्म के सरकर्दा भरम हैं जिन्हें साइंस को इंसानों के दरमियान अपने तजदीदी मिशन में कुचल देना चाहिए। ये खसूसी वहम अदम की जानब इशारा करता है। फ़ानी अकल मादे में एहसास की बुनियादों पर अमल करते हुए हैवानी मकनातीसियत है, मगर ये नाम नहाद अकल जिसमें से सारी बदी निकलती है खुद की मुखालफत करती है और इसे बिलाखिर अबदी सच्चाई या क्रिश्चियन साइंस में बयान करदा इलाही अकल को तस्लीम करना पड़ता है। क्रिश्चियन साइंस में हमारे इदराक के तनासुब में हमें विरासत के अकीदे, मादे पर अकल के अकीदे या हैवानी मकनातीसियत के अकीदे से आज़ाद किया जाता है, और फ़ानी हस्ती के मेयार से मुतल्लिक हमारे रूहानी फहम के तनासुब में हम गुनाह को उसकी तसव्वुराती ताकत से गैर मुसल्ला करते हैं। माबादुल तिबियाती शिफा के तरीक़ों और बुनियादों से बेखबर होते हुए शायद आप तनवीम, रूहानियात, इल्मुल बर्क के साथ इसे जोड़ने की कोशिश करें, मगर इन में से कोई तरीक़ा भी माबादुल तिबियाती शिफा के साथ जोड़ा नहीं जा सकता। क्रिश्चियन साइंस जहनी अमल के पैंदे तक जाती है और असबात अदल इलाही को जाहिर करती है जो पूरे इलाही अमल की दुरुस्तगी की तरफ इशारा करती है, जैसे कि इलाही अकल का इजरा और नतीजा मुखालिफ नाम नहाद अमल की गलती होता है। बदी, सहर परस्ती, जादूगरी, तनवीम, हैवानी मकनातीसियत, इल्मे नौमियात। अकीदे के सहर अंगेज भरम के तहत कोई शख्स समझ सकता है कि वो गर्मी में चलता हुआ जम रहा है और कि वो खुश्की पर चलता हुआ तैर रहा है। सुई की चुभन उसे तकलीफ नहीं देगी, एक मज़ेदार परफ्यूम उसके लिए नाकाबले बर्दाश्त होगा। हैवानी मकनातीसियत यूं मादी फहम को बेनकाब करती है और इसे एक ऐसे अकीदे के तौर पर पेश करती है जो असल बुनियाद या तौसीक के बगैर हो। अकीदे को तब्दील कर दें तो इसका एहसास बदल जाता है, अकीदे को ख़त्म कर दें तो एहसास गायब हो जाता है। मादी इंसान अज खुद और रजाकाराना गलती से एक मनफी दुरुस्तगी और मुस्बत गलती से बना है। दूसरे वाला खुद को सही समझता है। इंसान की रूहानी इनफरादियत कभी गलत नहीं होती, ये इंसान के खालिक की शबीह है। मादा बशर को हकीकी इब्तदा और हस्ती के हकायक से नहीं जोड़ सकता जिसमें सब कुछ ख़त्म हो जाना चाहिए। ये सिर्फ रूह की बरतरी को तस्लीम करने से होगा जो मादे के दामों को मनसूख करता है कि बशर फ़ानियत को बर्खास्त करें और किसी मुस्तहकम रूहानी ताल्लुक़ को तलाश करें जो इंसान को हमेशा के लिए अपने खालक की तरफ से लाजम मलजूम इलाही शबी में कायम रखता है। इस नस्ल को जो क्रिश्चियन साइंस की अदालत में बैठती है, صرف ایسے طریقوں کی منظوری کرنے دیں جو سچائی میں قابل اثبات ہیں اور ان کے کاموں سے جانے جاتے ہیں، اور دیگر سبھی کی درجہ بندی کرنے دیں، جیسے کہ مقدس پولوس نے گلتیوں کے نام اپنے بڑے خط میں کیا جب اس نے یوں لکھا، اب جسم کے کام تو ظاہر ہیں، یعنی حرام کاری، ناپاکی، شہوت پرستی، بت پرستی، جادوگری، عداوتیں، جھگڑا، حسد، غصہ، تفرقے، جدائیاں، بدتیں، بغض، نشہ بازی، ناچ رنگ اور ان کی ماند۔ ان کی بابت تمہیں پہلے سے کہہ دیتا ہوں، جیسا کہ پیشتر جتا چکا ہوں، کہ ایسے کام کرنے والے خدا کی بادشاہی کے وارث نہ ہوں گے، مگر روح کا پھل محبت، خوشی، اطمینان، تحمل، مہربانی، نیکی، ایمانداری، حلم، پرہیزگاری ہے۔ ایسے کاموں کی کوئی شریعت مخالف نہیں۔ یہ خیال کہ عقل اور مادہ گناہ، بیماری اور موت سے متعلق انسانی وہم میں ایک ساتھ جڑتے ہیں، آخرکار یہ عقل کی سائنس کے سپرد ہونا چاہیے جو اس خیال کی نفی کرتی ہے۔ خدا عقل ہے اور خدا لامحدود ہے، لہٰذا سبھی کچھ عقل ہے۔ اس بیان پر وجود کی ساری سائنس بنیاد رکھتی ہے، اور سائنس کا اصول ہم آہنگی اور لافانیت کا اظہار کرتے ہوئے الہی ہے۔ ساری طاقت خدا یعنی اچھائی سے تعلق رکھتی ہے۔ اب میں میری بیکر ریڈی کی جانب سے چرچ مینول میں دیے گئے روزانہ کے 3 فرائض پڑھوں گا۔ روزمرہ کی دعا۔ اس چرچ کے ہر رکن کا یہ فرض ہے کہ ہر روز یہ دعا کرے، تیری بادشاہی آئے، الہی حق، زندگی اور محبت کی سلطنت مجھ میں قائم ہو اور سب گناہ مجھ سے خارج ہو جائیں، اور تیرا کلام سب انسانوں کی محبت کو وافر کرے اور ان پر حکومت کرے۔ مقاصد اور اعمال کا ایک اصول۔ نہ کوئی مخالفت، نہ ہی کوئی محض ذاتی وابستگی مادری چرچ کے کسی رکن کے مقاصد یا اعمال پر اثر انداز ہونے چاہیے۔ سائنس میں صرف الہی محبت حکومت کرتی ہے، اور ایک مسیحی سائنسدان گناہ کو رد کرنے سے حقیقی بھائی چارے، خیرات پسندی اور معافی سے محبت کی شیریں آسائشوں کی عکاسی کرتا ہے۔ اس چرچ کے تمام اراکین کو سب گناہوں سے، غلط قسم کی پیشن گوئیوں، منصفیوں، مذمتوں، اصلاحوں، غلط تاثرات کو لینے اور غلط متاثر ہونے سے آزاد رہنے کے لیے ہر روز خیال رکھنا چاہیے اور دعا کرنی چاہیے۔ فرض کے لیے چوکسی۔ اس چرچ کے ہر رکن کا یہ فرض ہے کہ وہ ہر روز جارحانہ ذہنی آرا کے خلاف خود کو تیار رکھے، اور خدا اور اپنے قائد اور انسانوں کے لیے اپنے فرائض کو نہ کبھی بھولے اور نہ کبھی نظر انداز کرے۔ اس کے کاموں کے باعث اس کا انصاف ہوگا، وہ بے قصور یا قصوروار ہوگا۔